बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्रिका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु। वंदे प्रभु,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन की उन आशीषों को पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मित्रों, यदि आपको भी आशीष मिलता है तो आप भी अवश्य ही हमें पत्र लिखें या फोन करें ताकि हम उन सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों में कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा पौलुस के जीवन के द्वारा कि दांवते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा करते हैं, प्रचार के कार्य करते हैं, उनको उनका परिश्रम या फल मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में हमने यह भी देखा कि हमें उस दौड़ में दौड़ना है जिसमें हमें इनाम मिलता है। जी हाँ, मसीही आत्मिक दौड़। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 10 से अध्ययन करेंगे जिसका विषय है स्वतंत्रता छूट नहीं है। ध्यान दें, स्वतंत्रता छूट नहीं है। मेरे मित्रों, आज का यह अध्ययन भी मसीही स्वतंत्रता से ही संबंधित है और यह विषय अध्याय 11 उसके एक पद तक चलेगा। हम स्वतंत्रता का एक और क्षेत्र देखेंगे जो इसराइल राष्ट्र के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय उसका एक पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय एक पद लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ध्यान दीजिए, हे भाइयों से अध्याय 10 अध्याय 9 से जुड़ता है। पौलुस कह रहा है कि वह मसीह की न्याय आसन के समक्ष निकम्मा ठहराया जाना नहीं चाहता था, वह प्रतिफल पाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम सब इस बात से अनजान रहो। जी हाँ, जब पौलुस यह लिख रहा था तो निश्चय जानिए कि पाठक उस बात से अनजान है जो पौलुस उन्हें बताना चाहता है। कुरिन्थ की कलीसिया मिली जुली कलीसिया थी, अर्थात उसमें यहूदी और यूनानी या अन्य जाति विश्वासी थे। आज एक यहूदी विश्वासी कुछ असामान्य दिखाई देता है, परंतु उस युग में अन्य जाति विश्वासी असामान्य प्रतीत होते थे क्योंकि आरंभिक विश्वासी यहूदी ही थे। मेरे प्रियो, जब पौलुस कहता है हमारे सब बाप दादे, तब वह वास्तव में यहूदी विश्वासियों को संबोधित करता है। पौलुस और वे इसराइली थे और उन सब का एक ही इतिहास था। हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यह संभवतः उस समय का उल्लेख है जब इसराइली मिस्र के दासत्व से निकले थे और लाल सागर पार कर चुके थे। तो मित्रों आइए हम देखें पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 2-5 पद लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, इससे प्रकट होता है कि मनुष्य कितना कुछ अनुभव पाकर भी विश्वास नहीं करता है। इससे इसराइल को प्राप्त अद्भुत स्वतंत्रता भी प्रकट होती है। उस समय जब उन्होंने लाल सागर पार किया था, तब उस समय तक उनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं थी, अतः वे व्यवस्था के अधीन नहीं थे। उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया। सौभाग्य विफलता का बीमा नहीं है। अनेक धनवान मनुष्यों के पुत्रों को यह सीखना पड़ा है। जी हाँ, अनेक मनुष्य जिनको राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार में या सामाजिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है, उन्होंने भी यह शिक्षा ली है। लिखा है वे बादल के नीचे थे, अर्थात उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा था। वे सब सुरक्षित लाल सागर के पार हुए। मेरे प्रियो, लिखा है आगे मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ फिर बपतिस्मा शब्द आया है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। मेरा यूनानी शब्दकोश इसके 20 अर्थ बताता है। हमारे अनुवादकों ने इस शब्द का अनुवाद नहीं किया है, उन्होंने उसे केवल इसको ज्यों का त्यों ही रख दिया है। अतः लेखक के मन की बात तो समझना कठिन है, क्योंकि अनुवादकों ने ही यह प्रयास नहीं किया। उन्होंने शब्द को जैसा है वैसा ही रख दिया है। इसका कारण यह हुआ कि इसका अर्थ एक ही निकाला जाता है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा का अर्थ है पहचान। पानी का बपतिस्मा यही अर्थ रखता है, क्योंकि वह मसीह के साथ हमारी पहचान बनाता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम उसके साथ दफन किए जाते हैं। यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वह मसीह की देह में हमारी पहचान बनाता है। वह हमें देह में एक अंग बनाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। अध्याय 12 में पौलुस इसकी भी व्याख्या करेगा। प्रियो, यहां लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। कितनों ने मूसा का बपतिस्मा लिया था? अब आप यह न सोचे कि मूसा ने लाल सागर में बपतिस्मा की विधि पूरी की थी और उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि वे तो लेश मात्र भी गीले नहीं हुए थे। निर्गमन में तो लिखा है कि उन्होंने लाल सागर के सूखे तल पर चलकर उसे पार किया था। जी हाँ, परमेश्वर ने समुद्री तल को पूर्ण रूपेण सूखा कर दिया था और उन पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगा था। उन्होंने सूखी भूमि पार किया था। जो पानी में गए वे तो वास्तव में मिस्रवासी थे। मेरे प्रियो, वे पूरे जलमग्न हो गए थे। अतः जब वह कहता है कि मूसा का बपतिस्मा, तो वह पानी का उल्लेख नहीं कर रहा है, न ही वह पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, क्योंकि वह कहता है मूसा का बपतिस्मा। अतः उसके कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि उन्होंने मूसा के साथ अपनी पहचान बनाई। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुन्दर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मेरे मित्रों, इसराइल के वंशजों ने मूसा के साथ अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, विश्वास के द्वारा ही उन्होंने लाल सागर पार किया। यह विश्वास किसका था? इसराइलियों में तो विश्वास नाम मात्र का भी नहीं था। निर्गमन में लिखा वृतांत को पढ़ें। वे तो लौटकर मिस्र चले जाना चाहते थे और मूसा को दोषी ठहराते थे कि वह उन्हें भयानक जंगल में ले आया था। विश्वास तो केवल मूसा ही में था। जी हाँ, मूसा ने जाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लाल सागर पर लाठी मारी थी। मूसा ही उन्हें समुद्र के तल के पार लेकर के गया था। समुद्र पार करने के बाद उन्होंने मूसा का गीत गाया। देखिए निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय में। मित्रों, यह कैसा अद्भुत गीत है। यह उन्होंने मूसा के साथ पहचान बनाई थी। यह हमारे उद्धार का एक चित्रण है। मसीह मृत्यु के जल के पार गया और हम उसकी मृत्यु द्वारा पार लगाए गए हैं, उसकी पहचान में हो गए हैं। अब हम एक जीवित उद्धारकर्ता के अभिन्न अंग हैं, उसमें बपतिस्मा पाते हैं। इस प्रकार बपतिस्मा हमारा उद्धार करता है। मसीह में विश्वास करने पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मसीह में अवस्थित कर देता है। जी हाँ, पानी का बपतिस्मा इसका उदाहरण है। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु वह वास्तव में एक संस्कार है। सच्चा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का कार्य है। मेरे प्रियो, इसराइलियों ने मूसा का बपतिस्मा लिया और वे लाल सागर के पार हुए और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, अर्थात मन्ना खाया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यह मसीह को प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए क्यों लिखा गया है? पौलुस इसका कारण हमें समझाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10:6 में हम पढ़ते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। मेरे प्रियो, पहले 5 में इनकी स्वतंत्रता के उदाहरण हैं। अब इससे गहराई तक जाने वाले भाग में हम देखेंगे कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया। वह इसे हमारे लिए प्रासंगिक बनाता है। यह हमारे उदाहरण के लिए है कि उसके साथ जो हुआ है उसे हम जाने और सीखें। आपके और मेरे लिए यह लिखा गया है कि हम इस पर ध्यान दें। इसराइलियों को स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु उन्होंने क्या किया? लिखा है कि उन्होंने लालच किया। किस बात का लालच किया? गिनती की पुस्तक 11:4-6 में हम पढ़ते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मित्रों, लिखा है कि वे कामुकता करने लगे। गंदने प्याज और लहसुन की इच्छा में क्या बुराई है? यदि वे इन वस्तुओं को खाते तो उनके साथ संगति की इच्छा नहीं होती, परंतु यहाँ मुख्य विषय यह है कि उन्होंने उन वस्तुओं की लालसा की जो परमेश्वर की इच्छा में उनके लिए नहीं थी। यह उनके विद्रोह का आरंभ था। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कितनी बार लालसा पाप को जन्म देती है? अदन की वाटिका में इसका आरंभ हुआ था। उत्पत्ति के पुस्तक 3:6 में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। मित्रों, या परमेश्वर की इच्छा से हटकर किसी बात की लालसा थी? लालसा क्या है? मनोवैज्ञानिक संकोच और निषेध की चर्चा करते हैं। वे लालसा को जीवन की सर्वोच्चता कहते हैं। लालसा क्या है? इन उदाहरणों में लालसा की वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा के बाहर थीं। उस समय परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी कि उन्हें उनकी इच्छा की वे वस्तुएं मिले। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10:7 में, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। जी हाँ, आपके जीवन में परमेश्वर के स्थान पर रखी गई प्रत्येक वस्तु एक मूर्ति स्वरूप ही है, यदि आप उसे प्राथमिकता देते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:8-10 में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उन लोगों के कुछ पापों की सूची हमें देता है। वे बार बार परमेश्वर से शिकायत करते और कुड़कुड़ाते थे। यह उन लोगों का उदाहरण है जो परमेश्वर की इच्छा से अलग वस्तुओं की लालसा करते हैं, जिसे आज भी हम देखते हैं। लोग संतुष्ट नहीं होते, परंतु परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और अधिक पाने की लालसा करते हैं। परमेश्वर के पास तो अपने लोगों के लिए सदैव भले वस्तुएं ही होती है। यह बात तब भी सच थी और आज भी सच है। वे सदैव उन्हीं वस्तुओं की लालसा करते हैं जिन्हें परमेश्वर उन्हें देना नहीं चाहता था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 11 पद में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मेरे प्रियो, हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें मसीही स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु हमारी लालसाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। हमें यह जानना अति आवश्यक है कि परमेश्वर की लालसा क्या है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जी हाँ, आप चाहे कोई भी हो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप पतन के गर्त या गड्ढे में गिर सकते हैं। हम में से किसी के लिए भी यह बहुत आसान है कि बड़ी गलती करें, ठोकर खाएं और गिर जाएं। एक परिपक्व विश्वासी, एक पवित्र जन होकर भी गिर जाना अति संभव है। अतः आपको और मुझे अत्यधिक सतर्क रहना है कि हम परमेश्वर की इच्छा की सीमा में रहें। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को ठंडा न करने दें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे मित्रों, अधिकतर मनुष्यों के विचार में उनके सदृश अन्य किसी पर परीक्षाएं नहीं आई हैं। मेरे प्रियो, आप पर कैसी भी परीक्षा आती है, निश्चय ही अन्य विश्वासी भी हैं जो वैसी ही परीक्षा में पड़े हुए हैं। परंतु प्रोत्साहन की बात तो यह है कि परमेश्वर आपके लिए मुक्ति का मार्ग तैयार रखता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह आपकी सहन शक्ति से अधिक आपको परीक्षा में नहीं आने देगा। डॉक्टर ह्यूटन का कहना है, परमेश्वर सदैव मुक्ति का मार्ग तैयार करता है, और कभी कभी तो वह मार्ग राजा का मुख्य मार्ग होता है जिसमें भागना भी संभव हो। दूसरे शब्दों में, शैतान को पीठ दिखाओ, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ पड़ो, परीक्षा से भागो। परीक्षाओं में गिरने का एक मुख्य कारण यह है कि हम रसोई में घुसे हुए एक बालक की नाई हैं, जो टॉफी चुराने के कारण या चॉकलेट चुराने के कारण वहां से माता के द्वारा पकड़े जाते हैं। उसकी माता ने आवाज सुनी तो पूछा, बिल्ली तुम कहाँ हो? उसने कहा, वह रसोई में है। माँ ने पूछा, वहां वह क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं परीक्षा से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, परीक्षा से संघर्ष करने का स्थान वह नहीं है, वह तो भाग खड़े होने का स्थान है। अगर आप आग से खेलेंगे तो निश्चय है कि आप जल जाएंगे, इससे भला है कि आप दूर रहें। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं, इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। जी हाँ, कुरिन्थ में मूर्ति पूजा उनकी परीक्षा थी। आपके लिए संभवतः मूर्ति पूजा एक परीक्षा ना हो, परंतु बाइबल के अनुसार लालच करना भी एक मूर्ति पूजा है। आज इसकी हमारे चारों ओर बहुतायत है। आगे पौलुस समझाएगा कि प्रभु भोज की सहभागिता के लिए पृथक होना कितना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय 16 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इसराइली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? मेरे मित्रों, पौलुस का यह वाद तर्क संगत है। वह कहता है कि मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, अतः मूर्ति को चढ़ाया हुआ मांस पूर्ववत ही है। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब आप खा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं में या दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मेरे मित्रों, पौलुस अब तक मसीही स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा है। यद्यपि मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा रहती है, इसलिए पौलुस समझाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ लोगों की समझ में मूर्ति पूजा को चढ़ाया हुआ मांस खाना मूर्ति पूजा करने के तुल्य था। विश्वासी को अपने मन का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? मेरे मित्रों, अब पौलुस लौटकर वहीं आता है जहां उसने इस भाग के आरंभ मसीही स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की थी। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 23 पद, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। ध्यान दें, पौलुस कहता है कि इस संदिग्ध बातों को करने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त थी। जिन बातों के सही या गलत होने के विषय बाइबल चुप है। उदाहरण के तौर पर देखें, पौलुस कहता होगा कि यदि मेरा मन करेगा तो मैं खेल देखने जाऊंगा। मेरे विचार में पौलुस अपने युग के ओलंपिक खेल देखने के लिए अवश्य जाता होगा। वे उस युग के बड़े बड़े स्टेडियम में आयोजित किए जाते होंगे। पौलुस कहता है कि उसके लिए ये सब बातें नियम आधारित हैं, परंतु ये सब करने में उचित नहीं, क्योंकि उसके कार्य संभवतः किसी दुर्बल भाई को ठोकर खिला सकते हैं। वह कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। जी हाँ, सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती है, अर्थात वे विश्वास में मेरे या मेरे विकास का कारण नहीं है। जी हाँ, एक बार एक युवा प्रचारक ने मुझसे कहा, आपके विचार में एक प्रचारक को खेल देखने जाना चाहिए या नहीं? वह जानता था कि मैं नहीं जाता हूँ, जबकि मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उससे कहा, यद्यपि मैंने खेलकूद में भाग लेने में अत्यधिक आनंद उठाया है, मैं दर्शक भी बहुत अच्छा हूँ, परंतु दर्शक बहुत ही कम रहा हूँ। मुझे किसी को फुटबॉल या हॉकी खेल या अन्य खेल खेलते देखने में आनंद नहीं आता है जितना कि क्रिकेट में, विशेष करके जब उन्हें खेलने का पैसा मिल रहा हो। मैं मनोरंजन के लिए खेलता था और आनंद लेता था। तथापि मैं स्कूल में था तब मैंने एक बहुत सहायक सी पुस्तक पढ़ी। उसमें लिखा था कि प्रचारक को अपना जीवन उन्हीं बातों पर सीमित रखना है जिन्हें वह सेवा में काम में ले सकते हैं, कि वह क्या देखता है, वह कहाँ जाता है, कैसे अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन उसकी सेवा है, हर एक बात उसकी चक्की का अनाज हो। दूसरे शब्दों में, एक प्रचारक को अपना संपूर्ण जीवन प्रचार मंच में लगा देना है, उसके जीवन में कोई भी बात छिपी ना हो, उसे सब कुछ काम में लेना चाहिए। अतः मैंने उसे हॉकी के बारे में कहा, यदि आप हॉकी के खेल का प्रचार में उपयोग कर सकें और आप कर सकते हैं तो खेल देखने जाने में कोई बुराई नहीं है। आप हॉकी के खेल से अनेक उदाहरण दे सकते हैं, तथापि आपका जाना उचित नहीं क्योंकि किसी न किसी पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को गहरे रूप में समझ सकें कि हमें किन क्षेत्रों में भाग लेना है और नहीं लेना है, क्या हमें उन्नति दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। इसलिए पौलुस इन सारी बातों को कहता है कि जो हमारे लाभ की नहीं उन्हें नहीं करना है, जिससे हमारे विश्वासी भाई या बहन को ठोकर पहुंचती है उन्हें हमें नहीं करना है। आज हम निर्णय लें अपने जीवन में कि हम किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। मित्रों, यदि आपको आज के वचन के द्वारा आशीष मिला है तो हमें पत्र के द्वारा या फोन के द्वारा अवश्य ही अपने आशीषों को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिल करके प्रभु को धन्य कह सकें, उसकी स्तुति कर सकें। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि वे भी आपके द्वारा से आत्मिक लाभ को प्राप्त करने पाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा, आज के अध्ययन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। पूछेंगे तब वो धर्मी सब, पूछेंगे तब वो धर्मी सब, हमने ये सब कब किया। तुझको खाना दिया, तुझको पानी दिया, हमने बता कब किया। महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा मेरा जा आएगा, है।